فرصت کے لمحات ہے نعمت خدا کی جان لو کر لو ان میں نیکیاں جنت کا یوں سامان لو.
مزید چینل کے ناظرین پروگرام میں خوش آمدید. آج کے اس پروگرام میں ایک نئے موضوع فرصت کے لمحات میں فکروں کے انبار کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. فرصت کے لمحات میں پریشان ذہن, منفی خیالات اور بے سکونی ایک عام حقیقت ہے. گھر بار کی ٹینشن, صحت کی پریشانی یا مال کمانے کی فکر, الغرض بالخصوص فارغ وقت میں کئی طرح کی فکریں ہمیں گھیر لیتی ہیں, سوچیں بے سکون کر لیتی ہیں. ان سب کی وجوہات کیا ہیں؟ فرصت کے لمحات کو پرسکون کیسے گزارا جا سکتا ہے؟ جی ہم علی چین کے ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے عاشقان رسول سے ان کے خیالات اور تاثرات. مدی چینل دیکھتے رہیے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
فرصت کے لمحات ہے نعمت خدا کی جان لو, فرصت کے لمحات ہے نعمت خدا کی جان لو, کر لو ان میں نیکیاں جنت کا یوں سامان لو, کر لو ان میں نیکیاں جنت کا یوں سامان لو.
فرصت کے لمحات میں اس وقت آپ ایک نئے موضوع کے ساتھ ہمیں دیکھ رہے ہیں. عنوان ہے فرصت کے لمحات فکروں کے انبار. اس سلسلے میں آج ہم مختلف اسلام بھائیوں سے ان کی آرا جانیں گے. چیز ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ جب تھوڑا سا فراغت محسوس کرتے ہیں نا, تو تھوڑا سا وقت ان کو ملتا ہے, تو مختلف سوچوں فکروں پریشانیوں میں وہ گر جاتے ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اتنی زیادہ ہو گئی ہے, غریب آدمی کی پہنچ سے بہت باہر ہو گئی ہے, بہت باہر. جو لوگ صبح ناشتہ, دوپہر کھانا, رات کو کھانا کرتے تھے, اب ان کے یہاں ایسا سسٹم ہے کہ صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا, اور رات والا جو کھانا ہے دوپہر والا غائب ہے. رات والے جو کھانا ہے وہ بھی بامشکل ہے, یعنی کہ پیٹ بھر کے نہیں ہے بچوں کا. جو لوگ کلو دودھ لیتے تھے بچوں کے لیے, وہ پاؤ لینے پہ مجبور ہیں. تو یہ ٹینشنیں انسان کو مار گئی ہیں.
یہ دنیا میں ٹینشن ختم نہیں ہو سکتی, بڑھتی رہتی ہے, کم نہیں ہوتی.
دنیا میں آئے شیطان کی مشکلیں میں پھنس گئے.
ہمارا اعمال میں بہت کمزوری ہے, مطلب یہ کہ بادشاہی نہیں ہے, ایک دوسروں کے ساتھ نہیں ہے, ہر بندہ اپنے آپ میں لگا ہوا ہے, اور دوسری بات ہے کہ دنیا داری میں لگا ہوا ہے کہ دنیا کو بنائے, آخرت کا کوئی فکر ہی نہیں ہے.
سب دنیا کو نظم العین بنا لیا کہ رزق کے چکر میں رازق کو چھوڑ دیا. ارے بھائی, رزق کے چکر میں رازق کو نہیں چھوڑو, رازق کو پکڑ لو, رزق خود بخود قدموں میں آ جائے گا.
نماز پڑھے, ماں باپ کا دل خوش کرے, محنت سے کام کرے, کوئی پریشانی نہیں ہے.
ہم لوگ ایمان سے دور ہوتے جا رہے ہیں, دین سے ہم علیحدہ ہٹ رہے ہیں, حرام کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور جو ہے نا اس میں پریشانی تو پھر ہم لوگوں کو آئے گی جب ہم دین کا کام چھوڑیں گے, تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہم پریشان تو ہوں گے.
میرے نزدیک تو دین سے دوری یہ جو پریشانی ہے, ٹینشن ہے وغیرہ جو ہے نا, رزق کا وعدہ اللہ رب العزت کرا ہوا ہے, انسانوں کے بس کا کام نہیں ہے کہ انسانوں کے پیٹ بھر سکیں.
اگر نیکی کا کام کریں گے تو یہ سب مسئلے حل ہو جائیں گے, ہمارا تو یہ اس پہ یقین ہے. اگر ہم غلط کاموں میں گھسیں گے تو پریشان رہیں گے.
ہم لوگ دین سے دور ہو گئے ہیں, نمازیں پڑھتے نہیں ہیں. اگر صبح اٹھیں, فجر کی نماز پڑھیں, اس کے بعد ناشتہ وجہ کر کے آپ دین کی وجہ سے چلیں, اور آپ کو روزی بھی ملے گی اچھی, اور سب کچھ ملے گا, مگر لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں.
مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ لوگ بالکل ایک دم ٹینشن میں آئے ہوئے, ہر چیز مہنگا ہو رہا ہے. ساری رات جاگتے ہیں, جب فجر کی اذانیں ہوتی ہیں تو لوگوں کو اپنے بستر یاد آ جاتے ہیں, وہ بستر پہ چلے جاتے ہیں. مسجد کے باہر بیٹھے وہ ہوتے ہیں, لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ مسجد کے اندر جا کے فجر کی نماز ادا کر لیں.
ہم لوگ صبح اٹھتے تھے, آج بھی ہم صبح اٹھتے ہیں, اور صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے ہم روزے پہ نکل جاتے ہیں.
مین بیسک ہم چھوڑ چکے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ جی حالات صحیح نہیں ہے, ہر طرح کے پھر مسائل ظاہر سی بات ہے پھر فیس کرنے پڑیں گے. اللہ پاک نے بالکل نماز فرض کی ہے, تو ہم فرض ہی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر دوسری ظاہر سی بات ہے سارے مسائل کا فیس کرنا پڑے گا ہمیں.
کہ ہم لوگ تو ساری رات جاگتے ہیں, موبائلوں میں رہتے ہیں, اور اس سے جب فارغ ہوتا ہے تو صبح جب اذان کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم سو جاتے ہیں, مطلب ہمارے اوپر شیطان حاوی ہو جاتا ہے. اب جب ہم دیر سے اٹھ جاتے ہیں تو اس میں کیا برکت ہوگا اس دن میں, کیا کیونکہ ہمارا پہلا والا نماز ہمارے سے نکل جاتا ہے.
یہاں رواج چل گیا ہے, بچے ابھی تک سوئے ہوئے ہوں گے, کیوں 11 بجے اٹھیں گے, 12 بجے اٹھیں گے. زندگی شروع ہوتی ہے صبح کے ٹائم میں. صبح اٹھو گے, اپنے کام پہ جاؤ گے, تو اگر وہ کام والا ٹائم ضائع کرنے میں, سونے میں گزار دے گا, تو کہاں وہ بات بنے گی. رات کو جاگتے رہتے ہیں, صبح سوتے رہتے ہیں, یہ تو الٹا سسٹم ہو گیا نا. یہ
اگر اپنا نماز سیدھا کرے اور نماز ٹائم پہ پڑھے تو کوئی ٹینشن نہ رزق کا ہوگا, اور نہ تمہارے گھر میں پریشانی آئے گا, نہ بیماری آئے گا. یہ سارے ہمارے اعمال کی وجہ ہے.
ہر آدمی جو ہے اس کے خرچے زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے,
बुनियादी वजह यही है।
ठीक है,
तो जाहिर है वो परेशान ही रहेगा, सोच में ही रहेगा।
आपको दौर ऐसा जा रहा है, आज सब पूछने की बात ही नहीं रही है, ना तो रात का पता है ना दिन का पता है। दो दो बज जाते हैं, तीन तीन बज जाते हैं रातों के।
रात के 12-1 बजे से पहले कोई सोता नहीं है। हमारी तो वही रूटीन अभी से चलती है, मैं 10 बजे सो जाता हूँ और सुबह माशाल्लाह 4 बजे आँख खुल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उस मालिक का। अगर हम रात को सोएंगे नहीं तो सुबह नमाज कौन पढ़ेगा? नमाज नहीं पढ़ेगा तो सब काम खराब हो जाएगा।
हम पहले हमारे बचपन में हम 2-2.5 रुपये कमा के रहते थे, 1.5 रुपया, 2 रुपये, 2.5 रुपया। माशाल्लाह इतनी बरकत थी, इतनी बरकत थी कि कोई कभी नहीं आती थी।
अच्छा, मेहमान भी आते थे, दिल खुश होता था
इतना ज़्यादा कि उनकी रोजियाँ पहले लग जाती थी।
लेकिन अब
आपको रोजी के अब मेहमान आ गए यार, कहाँ से खर्चा करूँ, कहाँ से खर्चा करूँ, ये हालत है।
उसकी वजह यही है कि हम नमाज से दूर होगा
भाई, अब दीन से काफिल हो रहे हैं, सारा मसला भी है।
आप समझते हैं कि इंसान की लाइफ में आने वाली परेशानियां और टेंशन जब सर से सवार होती हैं तो बंदा डिप्रेशन का शिकार होता है, उसकी सेहत पे भी कोई साइड इफेक्ट होता
है? बहुत असर पड़ता है, उसके आसाब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं डिप्रेशन में आने के बाद, टेंशनों में रहने के बाद। यानी कि इतना डिस्टर्ब होता है कि वो जो हंसने खेलने वाला बंदा था, बात बात पर लड़ाई झगड़ा और बीमारी करने के बाद मजबूर हो जाता है लोगों से।
दिमाग पे भी पड़ते हैं, जाहिर है हर तरफ पड़ते हैं, हर किस्म का असर इंसान के ऊपर पड़ता है जो अमल वो करता है।
और लोग ये कहने पर मजबूर होते हैं, यार ये तो बहुत अच्छा बंदा था, आज इसको क्या हो गया। तो इस जितना भी है सब डिप्रेशन की वजह से।
इन फिक्रों से निजात कैसे हासिल कर सकते हैं हम लोग?
नहीं, मरने के बाद मर जाएंगे, खत्म हो जाएगी।
अगर सीधी बात की जाए तो ये है कि बारगाह इलाही के अंदर सजदे किए जाए, तौबा की जाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ किया जाए, वही इस रास्तों से निकालने वाला है। उसके अलावा कोई और रास्ता मुझे नजर नहीं आता।
बस रास्ता यही है, अगर हम खुद सही होंगे तो हमारे बच्चे भी सही होंगे, दूसरे भी सही होंगे। वो अब हम सही नहीं है तो बच्चे भी सही नहीं है हमारे। यानी ये नई नस्लें जो ना वो खराब होती जा रही है, ज्यादा खराब होती जा रही है।
वो है कनाट पसंदी। किसी ने एक आदमी से पूछा, यार दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन है? भाई जिसके पास मालो दौलत है वो अमीर होता है। बोला नहीं, वो अमीर नहीं होता, अमीर आदमी वो होता है जो कनात पसंद हो, जिसके लिए थोड़ा भी बहुत हो।
मसरूफियत जिंदगी रखें, जिस महकमे में, जिस जगह पे, जहाँ काम करते हैं, जिस इदारे में काम करते हैं, जिनके मातहत काम करते हैं, खुश अखलाकी से और अपना फ़र्ज समझ के रोज़ी, ईमानदारी से फ़र्ज को रोज़ी समझ के रखें। क्योंकि हमने दुनिया में जिस मालिक के लिए हम खिदमत करते हैं, उसके आखरत वाले में जिसका जाना है, उस मालिक का भी हुक्म को बजा लाएँ साथ साथ।
जब तक जिंदा है फिक्र ही फिक्र रहेगी, खाते रहेंगे फिक्र भी रहेगी, जितनी जिंदगी चल रही है चल रही है, जब मर गए खत्म हो गई।
फुर्सत के लम्हात गए नेमत खुदा की जान लो, फुर्सत के लम्हात गए नेमत खुदा की जान लो, कर लो इनमें नेकियां जन्नत का यूं सामान लो।
ऐसे लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जिनकी रातें जाती हैं और दिन सोते हैं और फिर रिस्क में बेबरकती के रोने भी रोएंगे?
भाई उनके लिए यही पैगाम है कि दीन की तरफ आ जाए और बुराई का काम छोड़े,
या सिगरेट टेंशन परेशानियां खत्म
हो जाएगी इंशाल्लाह।
देखिए मोदी सिंह के नाज़रीन, नमाज जो है बेहयाई से रोकती है, नमाज रिस्क में बरकत का जरिया भी है, नमाजों से हम दूर होते जा रहे हैं और परेशानियां हमारे सर के ऊपर आती जा रही है।
फुर्सत के लम्हात गए नेमत खुदा की जान लो, फुर्सत के लम्हात गए नेमत खुदा की जान लो, कर लो इनमें नेकियां जन्नत का यूं सामान।
जब हमारा वक्त बचपने का था, लड़कपन का था, तो हम रात को ईशा के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर सो जाते थे और सुबह फजर की अजान पे खुद खुद आँख खुल जाती थी। आज का जो दौर है इसके बारे में आप बताइए क्या चल
रहा है? ये है लोग रात जल्दी हो तो सुबह फजर में उठेंगे, मस्जिदें वीरान पड़ी रहती हैं, नमाज फजर में कोई नहीं होता, मस्जिदें खाली होती हैं,
रात पूरी जागते रहते हैं।
रात जागने का टाइम है उनके पास। अगर कोई कहता है क्रिकेट खिलवा लो, रात भर क्रिकेट होती रहती है, बच्चे खेलते रहते हैं। भाई रात को जल्दी सो जाओ, सुबह फजर में उठो, मस्जिद में जाओ, नमाज अदा करो, सुबह उठेगा जल्दी, उसी टाइम पे अल्लाह ताला उतारता है।
रात 9 बजे हम घर पे निकल जाए, अंधेरा हो जाता था, सब बंद हो जाता था 9 बजे। हमारे वाली सब ढूंढने आ रहे हैं किधर, 9 बज गए भाई, कितनी देर हो गई, ओ हो बहुत रात हो गई। हम 9 बजे घर में चले गए,
अब तो तुम बैठे रहो इधर सारी रात।
हम लोग उठा उठा के थक जाते हैं फजर में, हम हालांकि मैं उठ जाते हैं 3:30-4 बजे। अब जो उसके यहाँ नमाजें नहीं हो रही उसके घर में, कुछ नहीं हो रहा है, तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो उसके घर में आफतें आएंगी।
एक दफा अमीर सुन्नत ने अफजावर इश्मा में बयान फरमाया, बयान खत्म हुआ तो एक पर्ची किसी ने लिख के दी कि अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज है, बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रही इस परेशानी से छुटकारा कैसे हासिल करूँ, कोई ऐसा वजीफा अता फरमा दें कि मेरी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएं। तो आपने इरशाद फरमाया, जो ये चाहता है कि मेरी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएं, उसको चाहिए कि 5 वक्त की नमाज तकबीर उल्लाह के साथ मस्जिद की पहली सफ में अदा करें। अल्लाह ने चाहा तो इसकी बरकत से ना सिर्फ उनकी परेशानियाँ ख़त्म होगी, उसकी तंगदस्ती भी ख़त्म होगी, उसकी रिस्क में भी बरकत आएगी, खुशहाली भी आएगी, उसकी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। नफ्सा नफ्सी का आलम है, परेशानी बहुत ज्यादा है ना, ऐसे में अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है ना फारिग, तो उसकी सोचें मुंतशिर होती है, फिक्रें और बढ़ दी है, कभी घर की, कभी किराए की, कभी बिजली की, तो ये अब खत्म होंगी।
ये जब भी खत्म होंगी, जब हम खुद सही हो जाएंगे और हमारा हम अपने बच्चों को सही करें, जब तक हम अपने आप सही नहीं होते, बच्चों को सही नहीं करते, जब तक हम सही नहीं हो सकते।
तनाज पसंदी करेंगे तो बेहतर होगा, ये नहीं कि आप देखें किसी की मकान को देखकर अपनी झोपड़ी को ना गिराएं, जो आपको मिलता है उसकी प्लानिंग करें, उसी को अपने घर के मेनू को अपने हिसाब किताब से बनाएं। जो घर का कमांडर यानी घर का जो बड़ा सरबरा होता है उसी की जिम्मेदारी होती है, उसमें अपने बच्चों को बताएं, दीगर रोजी का बताएं, ऐसा नहीं कि एक तरफ अगर आप शॉर्टकट की तरफ चले जाएंगे तो दुनिया भी ख़राब और आखिरत भी ख़राब। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है और बंदे का खौफ नहीं है तो फिर समझ लो फिर वो बात अलग है, अल्लाह का खौफ होगा तो दुनिया और आखिरत की भलाई वैसे ही हो जाएगी।
फुर्सत के लम्हात गए नेमत खुदा की जान लो, फुर्सत के लम्हात गए नेमत खुदा की जान लो, कर लो इनमें नेकियां जन्नत का यूं सामान लो।
अच्छा आप बता सकते हैं फिक्र आखिरत हमें कैसे नसीब हो सकती है?
जब अल्लाह का डर खौफ और अल्लाह की अजमत हमारे दिल में होगी, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमारे दिल में होगी, तो फिर इंशाल्लाह सारे काम करने आसान होंगे, अल्लाह की रगबत भी आएगी, अल्लाह की मोहब्बत भी आएगी, अल्लाह का खौफ भी नसीब होगा। रात दिन अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, शराबे पीना कोई टेंशन नहीं है, जुआ खेलना कोई टेंशन नहीं है, नमाजें 5 वक्त की उड़ा रहे हैं कोई टेंशन नहीं है,
मरना नहीं है, सब ने मौत का मजा चखना है, कोई बचेगा नहीं। फजर की नमाज अदा करो, जोर की नमाज अदा करो, असर पढ़ो, मगरिब पढ़ो, ईशा पढ़ो, फजर के बाद कुरान पाक की तिलावत करो।
मैं एक बात करना चाहूँगा आपके चैनल के तवज्जो से, 24 या 25 हद 30,000 रुपए तनख्वाह, लेकिन 30,000 बहुत कम लोगों की तनख्वाह है, बहुत कम। 25,000 रुपए तनख्वाह में अगर कोई किराए पर रहता है तो 16,000-15,000 उसके मकान का किराया गया, 10,000-12,000 बिजली का बिल गया, 1,500-2,000 गैस का बिल गया जो अब बढ़ गया है। अच्छा तनख्वाह तो बराबर हो गई, गैस का बिल भी उन्होंने कर्ज लेकर अदा कर दिया, अब खाने पीने का क्या होगा बच्चों के?
मेरी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई, इसे 5 साल में बैठा हुआ मैं हक की रोजी ढूंढता रहता हूँ, अभी भी मैं जा रहा हूँ।
आपको क्यों जरूरत पड़ रही है अभी 76 साल की उम्र में रोजी तलाश कर रहे हैं?
मेरा जो हाथ है ना पत्थर के नीचे हाथ है, मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहा हूँ ताकि मेरे को भी खुदा दी है और घर का भी काम निकल जाए। गुरबत में जिंदगी गुजारी है मैंने और गुरबत में जिंदगी में गुजार रहा हूँ। कभी इनको पूछो कि मैंने 5 रुपए आपसे मांगे, मैं 150 रुपए में खुश हूँ,
अल्लाह
अभी भी मैं 150 रुपए में खुश हूँ, खुदा का शुक्र है, अल्लाह का करम है, उसका एहसान है।
हम बहुत परेशान है, झूठ
तो परेशान रहेगी
वैसे
98% झूठ बोलते हैं, 2% सच बोलते हैं, इसमें भी आधे जो है ना 1 मिनट उसमें भी झूठ बोलने वाले, कम झूठ बोलने वाले और 1 मिनट में सच बोलने वाले भी, जब ये दुनिया चल रही है बाकी बेकार है। मेरे ख्याल से 12 साल की उम्र से सिगरेट पीता था ना, तो अभी मैंने 26 साल से सिगरेट छोड़ दी। आप जैसे बुजुर्ग ने बोला था कि बेटा ये मगरब की नमाज पढ़ के क्यों तू सिगरेट पीता है, मैंने बोला सब पीते हैं तो मैं भी पीता हूँ। 3 महीने के बाद फिर मुझे उसी जगह पे टोका, आज 25-26 साल हो गए नहीं पी रहा हूँ, कोई नमाज ही पढ़ेगी आदमी ने वो दुनिया से चला गया, इसके लिए भी मैं दुआ मांगता हूँ।
अल्लाह पाक करे कि आपके दिल की जो आवाज़ है कि काश पूरी उम्मत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच बोलने लग जाए।
अभी भी मैं रो के दुआ करता हूँ, हर वक्त दुआ करता हूँ, मैं आवाम के लिए दुआ खुदा की कसम, ये आँखें जो है ना अभी भी मेरे को दुआ आता है।
Thank you.
दुख हो रहा है, जाके घर देखो पूरी दिन जो है ना मन मेरा घर में था नहीं।
कैसे यही अर्ज करने आपसे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के लिए कुछ ऐसा करुण फरमा दें कि इनके दुख टूट जाएं, इनकी कुछ परेशानियां कम हो जाएं, इनके प्रॉब्लम और मसाइल ख़त्म हो जाएं। ये किसी से आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं करते कि ये लोग जो हैं अपने वक्त को जो आंसे बाकी हैं वो दिन सुकून के गुजार लें जो बाकी इनके रह गए हैं। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। ये दुआएं देंगे या सिद्दी आपको, आप ऐसा करम इनके ऊपर फरमा दें कि ये परेशान हाल जो लोग हैं इनकी परेशानियां ख़त्म हो जाएं। जज़ाकल्लाहु खैर।
अल्लाह अल्लाह सब्र अता फरमाए। वाकई है कि महंगाई अपनी जगह पर है, गर्मी बोलती है मेरा काम, बिजली बोलती है मैं चली। अब इस सूरत में अब जो खाते पीते लोग हैं वो तो जनरेटर तो यूपीएस और पता नहीं क्या क्या इनके इंतजाम हो जाते हैं पहले से ये होता है, लेकिन जो बेचारे गरीब जो होते हैं ना उनको तो इनकी अपनी तनख्वाह में गुजारा मुश्किल हो गया, हालात ऐसे पैदा हुए। बिजली का बिल जो आ रहा है ना आजकल ये भी लोग बताते हैं तो समझ नहीं आती कि ये बेचारे करेंगे क्या गरीब लोग, तो हालात तो बहुत नागुफ्ता पे है। तो अब इस सूरत में एक तो ये कह जा रहा है कि सब्र की तलकीन की जाएगी, इस पर चिढ़ना नहीं चाहिए, वादे चिढ़ते हैं कि अरे मौलाना बोलते हैं सब्र करो, और क्या बोले मौलाना अपनी तरफ थोड़ी बोलते हैं, अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह पाक फरमाता है और बिशारतें देता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, तो मशहूर आयत है कि बेशक अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है, और जिसके साथ अल्लाह हो गया उसको कोई शय नुकसान नहीं कर सकती, उसके लिए आफियत ही आफियत है, राहत ही राहत है। मुहर्रम शरीफ का महीना तो हमारे लिए खसूसियत के साथ सब्र का पैगाम लाता है, एक तरह से करबला शरीफ का जो वाक्य है सब्र ही की दास्तान है, वो बहुत बड़ी दास्तान है सब्र की, कि ऐसे ऐसे मसाइब व आलाम अहले बैत अतहार पर तोड़े गए लेकिन इन्होंने सब्र किया, बेसब्री नहीं की, तो हमें भी सब्र करना चाहिए। अच्छा, और जो ऐसे मुसीबत जदों की तकलीफ दूर कर सकता है, इनके गम गलत कर सकता है, गलत करना ये होता है गम गलत करना, दूर करना गम दूर करना, या उसमें कोई ना किसी तरह हिस्सा मिला सकता है उसकी राहत के लिए, उसको मिलाना चाहिए। अब मेरे को अल्लाह ने बहुत माल दिया है, मिसाल के तौर पर वो इतना बड़ा जनरेटर भी एडवांस में यूपीएस भी रखा है, जनरेटर बंद हो जाए तो यूपीएस इस्तेमाल करूंगा, एहतियातन बैटरी भी रख ली है, ये दोनों नाकाम तो बैटरी, ये नाकाम तो ये मैंने, तो क्या ये नहीं हो सकता कि मैं अपने किसी गरीब भाई को इन तीनों में से जो कम कीमत की चीज है वही किसी गरीब को दे दूं? दिल नहीं चलता। हम लोग खाली बातें मगरमच्छ के आंसू, हकीकत है या अखबार भरे पड़े होते हैं पैगाम, वो हमदर्दियों के मगरमच्छ के आंसू होते हैं और अपनी खुद वो जेब में ना हाथ हाथ नहीं जाता, कुछ किसी गरीब को टक्का दे दिया कभी, खाली बातें, तो ऐसा ना करें। अल्लाह हमें तौफीक दे जिनको माल दिया है, अपने गरीबों अपने गरीब भाइयों की अब मदद नहीं करोगे तो कब करोगे? इनके बच्चे चीखते होंगे गर्मियों में, नौ नौ घंटे 15-15 घंटे बिजली जा रही है बाद जगहों पर, इतनी हालत खराब है, गर्मी कैसी शिद्दत की है, फिर अमवात भी एक तादाद है जिनकी, खास कराची की बात करूं तो कराची में काफी अमवात हुई है गर्मी की वजह से। तो अब ये के बिजली यानी एक तो गर्मी, दूसरा बिजली चली जाए और बिजली का कोई इनको अल्टरनेट भी विचारों के बाद नहीं कि पंखा चले, अब ऐसी सूरत में ये क्या करेंगे यार, कहां पना लेंगे? चलो कोई ऐसा होगा जो किसी खुली जगह पर आ जाएगा, लेकिन काम धंधा ये वो, फिर पर्दा नशीन औरत हमारी बहू बेटियां क्या करेंगी, ये गर्मी का क्या इलाज करेंगी? फ्रिज अगर है भी बंद पड़ा हुआ है, पानी उसने गर्म कर देना है, सारे तो उसने कितना मतलब बचा हुआ खाना रात का दिन का कहीं का आया हुआ सब फ्रिज बंद है 15-15 घंटे, तो कहां बचेगा यार? ये कितना हरज हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, तो क्या جن کو اللہ نے رقمیں دی ہیں، مال دی ہیں، یقین مانے اتنا مال ہے لوگوں کے پاس، جن کے پاس ہے، کہ وہ گن نہیں سکتے. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس کتنا مال ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں کہاں میری رقمیں پھنسی ہوئی. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، کہاں کہاں میں نے قرضے دیے ہوئے ہیں، کہاں کہاں میری رقمیں رکی ہوئی ہیں، ان کو نہیں پتا. وہ لسٹ پھر نکالنا ہوتا ہوگا، لکھتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کمپیوٹر میں، ڈھونڈتے ہوں گے کہاں میرا مال، ہائے میرا مال، ہوئے میرا مال. مولا مولا کرو، مال کہیں نہیں جاتا. مال مال کرو گے کہیں مولا کی محبت ہاتھوں سے نہ نکل جائے. تو اپنے غریب بھائیوں کے لیے سب کو میں دعوت دوں گا کہ میدان میں آئیں، اپنے پڑوس میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ واقعی کوئی غریب ایسا کہ بجلی بھی گئی جا رہی ہے اور نہیں ہے جنریٹر، نہیں ہے کوئی، ان کو دلا دیں، بیٹری دلا دیں. بیٹری 20-30 ہزار کی آتی ہوگی، کتنی کی آتی ہوگی. ایک پنکھا چل جائے، ایک بتی جلا لیں گے لوگ، کچھ تو سکون ہو جائے گا. بچہ یار چین سے سو تو جائے گا، کتنے بچے دم توڑ جاتے ہوں گے یار اس طرح. اب کوئی آپ کو آ کے بولے گا تھوڑی کہ میرا بچہ گرمی کی وجہ سے دم توڑ گیا، سمجھ بھی نہیں پڑتی ہوگی کہ گرمی کی وجہ سے توڑا ہے دم، یہ بھی نہیں سمجھ پڑتی. بیمار ہو گیا، بھائی بیمار کیوں ہو گیا؟ اچھا گرمی بڑے بڑوں گرا دیتی گرمی. تو مہربانی کریں، اپنے غریب بھائیوں کی مدد کریں. اس میں سادات کرام کو خاص کر فوکس کریں. آپ آل رسول ہیں، تو ان کی بھی اگر یہ ضرورت مند ہیں تو ان کو بھی نظر کریں. بلا کر دھکے کھلا کر کچھ نہیں دینا ہے، پھر آپ کو نہیں چاہیے پیسہ. آپ خود کانٹیکٹ کریں اور ان کو پیش کریں، اور اگر یہ قبول کریں تو ان کا احسان مانیں. اپنا تصور نہ کریں کہ آپ نے کوئی احسان کیا ہے، کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے ان کے نانا جان کا صدقہ، سیدوں کے نانا جان کا صدقہ ہے تم کھا رہے ہیں، ان کو کہے کو دھکے کھلائیں گے؟ بلکہ غریبوں کو بھی کیوں دھکے کھلائیں؟ یہ بھی ہمارے محسن ہے کہ ہماری اگر کوئی چیز یہ قبول کر لیتے ہیں تو ہمیں اس کے وجہ سے جنت ملے گی. سودا مہنگا تھوڑی ہے، ہر نیکی جنت میں لے جانے والی ہے. تو ہمت کیجئے اور غریبوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیے، سادات کرام کی خدمت کے لیے آگے بڑھیے.
آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہ وہ ہر حال میں اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں؟ آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟
بالکل.
کیا پیغام دیں گے آپ؟
کہ اللہ تعالیٰ بس ان کے زبانوں میں سے یہی لفظ نکلے کہ شکر ادا مانگتے رہے اور جھوٹ سے پرہیز کرے اور سچائی پہ چلے.
اللہ پاک آپ کے لیے قدم قدم ثانیہ پیدا فرمائے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، فکریں اور پریشانیاں اس زندگی کا حصہ ہیں. نماز روزے کی پابندی، درود پاک کی کثرت، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر، سن تو بڑے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت، دنیاوی ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات کے بہترین راستے ہیں. آئیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں سکون قلبی اور ذہنی اطمینان عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
فرصت کے لمحات ہیں نعمت خدا کی، جان لو کر لو ان میں نیکیاں، جنت کا یوں سامان لو.